ब्रंट दे आर फेसिंग, उसकी सबसे बड़ी वजह जाहिर है कि यही है कि क्योंकि वहां पे अब जो यूएस और यूके के शिप्स हैं उनके बारे में हूथीज ने पहले ही कहा था कि जो भी कोई यहां से यूएस के इंटरेस्ट के या उनके पार्टनर्स के शिप्स गुजरेंगे उनके ऊपर हम अटैक्स करेंगे, क्योंकि ये जो कुछ इसराइल कर रहा है अपनी मिलिट्री कैंपेन गाजा स्ट्रिप में उसके साथ खड़े हुए हैं यूके एंड यूएस। रिसर्च फर्म जो ड्र्यूरी है उसने कहा है कि जो प्राइसेस हैं शिपिंग कंटेनर्स के वो डबल हो गए हैं सिंस दिसंबर, मिड दिसंबर, और उन्होंने कहा जी कि अब चीजें आप सारी एक्सपेक्ट करें कि 2/3 ऑफ 43 शिप्स जो कि इस वक्त जिनको के पोर्ट ऑफ हैलिफैक्स में आना था इस महीने के तकरीबन थर्ड वीक में आप समझ सकते हैं, तो वो अब एक दिन के डिले से या ज्यादा दिनों के डिले से भी यहां पे आ सकते हैं, और उसकी वजह से जाहिर है कि जो इम्पोर्टर्स हैं वो उनकी बड़ी मुश्किलें हैं, क्योंकि वो उन्होंने एक डेडलाइन दी होती है लोगों को कि भाई इस दिन चीजें हमारे पास आ जाएंगी और हम आपको सप्लाई कर देंगे, तो अब वो नहीं कर सकेंगे। तो
स्पेशली कॉस्ट फैक्टर भी उस पर नॉट मोर एक्सपेंसिव बिकॉज ऑफ दे गॉट टू टेक अ लॉन्ग टूर।
बहुत ज्यादा जी जी बिल्कुल। चाइल्ड केयर सेंटर्स जो हैं उन्होंने कहा जी आज ऑन्टेरियो गवर्नमेंट को कि हम शट डाउन कर देंगे अगर आपने हमको पैसे ना दिए या कॉम्पेंसेट ना किया। आपको पता ही है कि डे केयर सेंटर्स जो थे यहां पे ऑन्टेरियो में भी और बाकी मुल्क में भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थे, जबकि फेडरल गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो नेशनल 10 अ डे प्रोग्राम जो है इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है। ऑन्टेरियो ने बहुत बाद में ये इंट्रोड्यूस किया था लेकिन किया था। अब जो यहां की सबसे बड़ी जो चाइल्ड केयर प्रोग्राम चलाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है YMCA, उन्होंने कहा जी कि ऑन्टेरियो गवर्नमेंट ने कहा था कि जो ये प्रोग्राम 2022 में हम ला रहे हैं उसके अंदर 86,000 स्पॉट्स जो हम क्रिएट करेंगे फॉर ऑल द लाइसेंस्ड जो हैं ये चाइल्ड केयर प्रोग्राम्स, और 10 अ डे जो है वो हम करेंगे, लेकिन अभी तक ऑन्टेरियो गवर्नमेंट ने हमको प्रॉपर फंड्स नहीं दिए हैं, और चूंकि फंड्स नहीं दिए हैं तो ये सस्टेनेबल नहीं है। ये हमारे फंड्स हमको उन्होंने कहा जी चाहिए हैं स्टाफिंग कॉस्ट के लिए, केटरिंग, रेंट, हीटिंग सप्लाईज और इस तरह की चीजों के लिए, और ये सारे का सारा प्लान जो था इसको इसमें कहा गया था कि फीसें जो है उनको फ्रीज किया जाए इन 2022, जब आपको पता ही है कि पेंडेमिक स्टार्ट हुआ था और लोग जो है पेरेंट्स काफी परेशानी का उनको सामना था। तो अब वो कह रहे हैं जी कि आप 2.1% ऑन्टेरियो गवर्नमेंट ने कहा था कि हम इंक्रीज करेंगे 2024 में, लेकिन उस वक्त उन्होंने इन्फ्लेशन जो थी उसके अंदर उसको नहीं डाला था, तो एज अ रिजल्ट ये रेट्स जो हैं अब ये बहुत ज्यादा यानी कि हमारी कॉस्ट जो है ऊपर चली गई हैं, और इससे पहले उन्होंने कहा था कि 2023 में 2.75% हम करेंगे और फिर जो है नेक्स्ट ईयर 2.1, लेकिन वो आप कहते हैं जी ये फीजिबल नहीं है, तो इसलिए अनलेस एंड अंटिल आप हमें फंड्स नहीं देंगे तो हम इसको कैरी।
उन्होंने एक जो मिसाल दी है ना ये YMCA ने कि एक इन्फेंट को लुकिंग आफ्टर एन इन्फेंट इट इज कॉस्टिंग देम 10,000 to 13,000 dollars अ ईयर टू लुक आफ्टर वन इन्फेंट, तो दैट इज अ लॉट ऑफ मनी फॉर देम।
जी जी वही, तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमको कॉम्पनसेट करें।
एग्जैक्टली
हाँ कॉम्पनसेट करें। और जनाब माजिद भाई ने जो आपको आज की सबसे बड़ी खुशी की खबर सुनाई थी फ्रिजिड टेम्परेचर्स, तो मैं उसके अंदर जरा और जरा नमक छिड़क दूं है, तो जीटीके के अंदर नेक्स्ट वीक में भी जो है ये विंड चिल्स जो है चलते रहेंगे और आपको टेम्परेचर जो है फील होता रहेगा नेक्स्ट वीक में भी -20 डिग्रीज के पास। आज मोस्ट ऑफ जीटीए जो है वहां पे वैसे तो टेम्परेचर -9 है लेकिन विंड चिल के साथ आपको -15 फील हो रहा है। ओवरनाइट लो जो है वो -12 सेंटीग्रेड्स रहेगा लेकिन टुनाइट यू विल फील -18, और वो कहते हैं जी कि ये फिर मोस्ट ऑफ द वीक में फ्लरीज भी चलती रहेंगी और एक्सट्रीम कोल्ड वेदर जो है वो चलता रहेगा नेक्स्ट वीकेंड तक, उसमें कुछ कुछ फ्लरीज भी आएंगी एवरी नाउ एंड देन, और वो कहते हैं जी वार्मर विंड्स जो हैं और वार्मर टेम्परेचर्स जो हैं वो वीक ऑफ 2022 जो है उससे ऑनवर्ड्स फिर शुरू होंगे।
और इसको चाहिए आपको
ए अरफा भाजी नु पूछो जिन्होंने बदवामा दिया थे सुनो आइए अरफा भाजी ने पूछो जरूर ना पूछो जी जी। अच्छा जनाब SIU यानी के जो ये इन्वेस्टिगेशन यूनिट होती है उसने अब एक इन्वेस्टिगेशन बिठाई है, ये जब एक कोलिजन हुआ है ट्रांजिट बस इन मिसेस सागा और जिसमें कि एक आदमी जो था वो भी बहुत ज्यादा गंभीर तरीके से जख्मी हो गया था। पील रीजनल पुलिस ने कहा जी दो गाड़ियों का यहां पे टक्कर हुआ था बर्नथॉप एंड डिक्सी रोड के ऊपर। इसमें जो आप देख रहे हैं कि ये जो इनका व्हीकल है वो फोर डोर वो काफी बैडली डैमेज है और जो माई वे जो है वो भी काफी बुरे तरीके से बस जो है वो भी डैमेज्ड है। अब ये जो आदमी जिसमें जख्मी हुआ था ये इसको ट्रॉमा सेंटर में भेजा गया था विद इंजरीज। अब इसकी इंजरीज कैसी हैं वो तो अभी तक नहीं बताई हैं, लेकिन एसआईयू जो है अब इसकी करी, क्योंकि आपको पता ही है कि जब कभी कोई पुलिस की गाड़ी या पुलिस कभी इन्वॉल्व हो जाती है किसी एक्सीडेंट में और उसमें डेथ आ जाती है तो फिर एसआईयू जो है वो शामिल हो जाती है। तो वो कहते हैं जी कि ये इंटरसेक्शन जो था अभी तक सुबह तक तो बिल्कुल क्लोज था और इसमें ड्राइवर्स को कहा गया था कि आप अल्टरनेटिव रूट्स लें, तो अब अगर खुल गया है तो कुछ पता नहीं है। बहरहाल ये जो है इसको हटाने की कोशिश कर रहे थे इस बस को और ये जो सारा इधर रैकेट जो था हुआ था उसको हटाने के लिए। और जनाब आज है 15 जनवरी, 15 जनवरी को जनाब हम मनाते हैं, हम याद करते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर को, है जी। और आपको शायद पता ना होगा कि जो टाइम मैगजीन है उसका जो फर्स्ट कवर था, फर्स्ट कवर एवर टाइम मैगजीन का, उसके ऊपर मार्टिन लूथर किंग की पिक्चर आई थी। तो ही वॉज द मार्टिन लूथर किंग जो थे वो टाइम जो है वो मैन ऑफ द वो थे ईयर थे उसके लिए टाइम मैगजीन के लिए। तो आज उन्होंने भी बहुत सारी चीजें जो हैं टाइम मैगजीन ने याद की हैं जो कि उन्होंने उस वक्त के अपने आर्टिकल के अंदर लिखे थे। उन्होंने कहा जी कि मार्टिन लूथर जो है वो बड़े मशहूर हैं, वो जो उनकी एक फेमस स्पीच है आई हैव अ ड्रीम उसके लिए और अपनी सिविल राइट्स की जो मूवमेंट चलाते थे और बल्कि उनकी बड़ी एक लेगेसी है जिसने कि फिर उसके बाद ब्लैक्स से रिलेटेड खासतौर पर जो यूएस हिस्ट्री थी वो रीराइट की थी। वो कहते हैं जी सबसे पहले तो इनकी जो ये जो आई हैव अ ड्रीम स्पीच जो थी उसको बेसिकली इन्होंने नेम दिया था नॉर्मेलसी नेवर अगेन, लेकिन जो किंग के एडवाइजर्स थे उन्होंने इनको कहा कि नहीं नहीं आपको इसका नेम चेंज करने की जरूरत है क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली अपनी स्पीच के अंदर आई हैड अ ड्रीम, आई हैड अ ड्रीम की बात कर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने फिर इनका सारों का बात करने के बाद उन्होंने फिर अपनी इस जो बड़ी हिस्टोरिक स्पीच थी इसका नाम चेंज किया। वो कहते हैं जी कि गॉस्पल सिंगर जो थे महालिया जैक्सन उन्होंने बेसिकली इनको ये जोर दिया था कि अपनी स्पीच का नाम चेंज करें और फिर किंग ने इसके ऊपर एक तो इम्प्रूव भी किया था स्पीच को और इसका नाम भी चेंज किया था। उसके बाद जो है काफी अरसा तक लोग कहते रहे कि चूंकि इसने शेप किया एक तरह से ब्लैक्स की हिस्ट्री अमेरिका में तो एक नेशनल हॉलिडे जो है वो अनाउंस करने की जरूरत है, लेकिन अप अंटिल 1983 जो था कांग्रेस जो थी वो कॉन्स्टेंटली इस चीज को रेजिस्ट करती थी और इसको बहुत बड़ा लीडर नहीं मानती थी, लेकिन फिर 1983 स्टीवी वंडर्स जो है उन्होंने एक हैप्पी बर्थडे का इनके लिए सॉन्ग गाया था और फिर उस सॉन्ग ने जो है मोमेंटम ले लिया अमरीका के अंदर और फिर उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के रोनल्ड रीगन उन्होंने फिर साइन किया एज अ लॉ और 15 जनवरी को छुट्टी उन्होंने कहा और इसीलिए जो है अब ऑफिशियली जो है इसमें जो 50 स्टेट्स हैं उनके अंदर अब हौले हौले फिर आती गई और बाय 2000 ईयर 2000 अब तमाम ही तकरीबन जो स्टेट्स हैं ऑल 50 स्टेट्स ऑब्जर्व करती हैं एक ऑफिशियल हॉलीडे डे ऑफ 15 जनवरी को। ऑक्सफैम की जो ये रिपोर्ट आई है ना माजद भाई ये फिर साड़ा दिल साड़न वास्ते आई है। इस दफा उन्होंने क्या चलो फोर्ब्स को लोगे चलने आसी थोड़ा जहां है, फोर्ब्स ने बहुत दिल हमारा जला लिया शाजिया बीबी का, आज हम दिल जलाते हैं इनका, ठीक है जनाब। ऑक्सफैम की आज एक रिपोर्ट आई है, आपको पता ही है कि ये सारे जो हैं लेकर आते हैं बहुत सारी इक्वालिटी और पुअर कौन है रिच कौन है वो इस तरह की। वो कहते हैं जी कि सिंस 2020 5 बिलियन जो कि 60% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन बनते हैं वो बेतहाशा गरीब हो गए हैं, जबकि दुनिया के 5 richest men जो हैं सिंस 2020 उनकी वेल्थ में डबल का इजाफा हो गया है जी पहन। तो वो कहते हैं जी कि अगर इसी पेस पे इनकी वेल्थ बढ़ती रही तो द वर्ल्ड विल सी द फर्स्ट ट्रिलियनेयर नॉट बिलियनेयर ट्रिलियनेयर इन द नेक्स्ट 10 years, लेकिन एक्सक्यूज मी दुनिया में से पॉवर्टी हटाने के लिए 230 years लगेंगे, ठीक है जी।
अमीर आप नहीं होंगे
आहो सरू या सियापे ही नहीं रहेंगे सीजन ही नहीं होंगे तो वो कहते हैं जी 10 साल में ट्रिलियनेयर्स तो बनने शुरू हो जाएंगे, लेकिन पॉवर्टी एलिमिनेट करने के लिए 230 ईयर्स चाहिए होंगे। वो कहते हैं जी कि जिस वक्त से ये पेंडेमिक और वॉर और कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है बेतहाशा ऊपर चली गई है, उसकी वजह से रिच और पुअर के बीच में बेतहाशा जो है वो और ज्यादा गैप आ गया है, एंड ऑलिगैरिक फ्यू और जो वैस्ट मेजोरिटी ऑफ पीपल है उनके बीच में ये गैप जो है बढ़ता ही चला जा रहा है। उन्होंने चार चीजें जो आइडेंटिफाई की है और उसके अंदर उन्होंने सबसे बड़ा ब्लेम जो है कॉर्पोरेट्स को दिया है। वो कहते हैं जी ये कॉर्पोरेट्स जो है बेतहाशा इनइक्वालिटी जो है इसको ड्राइव कर रही है, अपनी जो तनख्वाहें हैं वो बढ़ाते नहीं है बल्कि उनको नीचे किया है इन्होंने तनख्वाहों ने, और अपने तमाम के तमाम प्रॉफिट्स जो है अपने सुपर रिच होने के ऊपर इन्होंने लगाए हैं। इसके ऊपर इन्होंने इंडिया की भी एक मिसाल दी है, उन्होंने कहा कि हालांकि वो भी जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, वहां पे बेतहाशा इनइक्वालिटी बढ़ गई है ऑन द लाइंस ऑफ जेंडर रेस कास्ट एंड क्लास, और दलित्स जो है खासतौर पे वहां पे बहुत ज्यादा फेस कर रहे हैं हाई कॉस्ट और डिस्क्रिमिनेशन। हालांकि जो एजुकेशन और प्राइवेट जो या कि हेल्थ केयर जो होता है वो हर किसी का बेसिक राइट होता है, वो तक जो है दलित्स को नहीं मिलता है। और वो कहते हैं जी कि ये इसमें रिपोर्ट जो है उसने फिर अब कहा है जिसका कि इन्होंने जो जिसमें के बात की है कि जी लोग अमीर हो रहे हैं, उसमें उन्होंने जितनी भी दुनिया की गवर्नमेंट्स और स्टेट्स हैं उनको कहा है कि ये जो वेल्थ इनइक्वालिटी है इसको रिड्यूस करने की आपको जरूरत है और इफेक्टिव किस्म के आपको लॉज लाएं ताकि ये कॉरपोरेट पावर जो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है ये ना बढ़े, और बिजनेसेस जो हैं उनको फ्री करें शेयर होल्डर ग्रीड से, उनसे दूर रखें इनको ताकि आम गरीब लोगों तक भी फायदा उनको पहुंच सके। ये देख लें कॉरपोरेट ग्रीड का सबसे बड़ा नतीजा, माजद भाई दिन ब दिन अमीर होते जा रहे हैं और मैं गरीब होती जा रही हूं दिन ब दिन, कितने लिफाफे आ रहे हैं माजद भाई को, इतने लिफाफे
लिविंग
देख लो आप, देख लो आप। ठीक है जी, अच्छा जनाब, वीकेंड के ऊपर दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज के अंदर बेतहाशा पैलेस्टाइन के हक में जो है वो जलसे जुलूस निकालेंगे, और जो कुछ ये जुल्म कर रहा है इसराइल गाजा के ऊपर उस सिलसिले में, क्योंकि अब 100 डेज जो है हो गए हैं इस वॉर को जो ये चल रही है, तो बेतहाशा लोग जो थे उन्होंने जलसे निकाले हैं मलेशिया में, साउथ अफ्रीका, यूके, इंडोनेशिया, थाईलैंड, जापान, इटली, ग्रीस, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, इंडिया के कुछ इलाकों में, ज्यादा में नहीं, तो बहुत ज्यादा बड़े बड़े रैलीज जो हैं दुनिया के अंदर निकले हैं जिसमें के लोगों ने कहा कि ये ब्लडशेड जिसने कि अभी तक 23,843 पैलेस्टीनियंस को मार दिया है और वूंड किया है 60,317 को, जिसमें कि बहुत सारे यानी कि किल्ड और वूंडेड में जिसमें कि बहुत सारे बच्चे और औरतें भी हैं, इसको फौरन खत्म करना चाहिए और सीज फायर की तरफ जाना चाहिए। कुआलालंपुर में जो लोग थे यूएस एम्बेसी के बाहर गैदर हुए और उन्होंने जो क्योंकि यूएस ने बहुत दफा वीटो किया यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन जो सीज फायर पे आई है उसको, इसके अलावा सैकड़ों ही लोग जो थे वो जमा हुए थे जकार्ता में भी यूएस एम्बेसी के बाहर, उन्होंने कहा जी के बॉयकॉट इसराइल, सीज फायर नाउ। साउथ अफ्रीका में तो आपको पता ही है उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस किया है इसराइल के खिलाफ, तो उन्होंने भी यूएस काउंसलेट के बाहर जो है बहुत बड़े मोर्चे निकाले। थाउजेंड्स ऑफ सेंट्रल लंदन में लोग जो थे वो भी वहां पे जमा रहे, वहां पे एक लीडर का कहना था कि जो यूके की पब्लिक है वो तो सपोर्ट करती है सीज फायर को, लेकिन यूके के पॉलिटिशियंस कंटिन्यूसली फंड कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं इस जीनोसाइड को। इसके अलावा जो है बहुत सारी रैलीज वाशिंगटन डीसी में और दूसरे अमेरिकन सिटीज में भी रहे, जापान में, थाईलैंड एंड इटली एंड ग्रीस एंड पाकिस्तान में भी बड़े बड़े मोर्चे निकाले गए जिसमें कि कहा गया कि भाई सीज फायर की तरफ जो है जाना ज्यादा जरूरी है। यूएस जो है जी उसने अब हूथीज के जो नए स्पॉट्स हैं यमन के अंदर उनके ऊपर अटैक्स किए हैं, और ये अटैक्स वो कहते हैं जी कि हमने रिटेलिएशन में किए हैं जो हूथीज हमारे ऊपर कर रहे हैं। यूएस मिलिट्री सेंट्रल कमांड जिसको कि सेंटकॉम भी कहते हैं, उसने कहा जी कि हमने टोमाहॉक्स जो मिसल्स हैं वो मारे हैं यूएस नेवी एसएस कॉर्नी से हूथी के जो साइट्स हैं उसके ऊपर, और वो कहते हैं जी कि यूएस और यूके ने बेतहाशा ये अपने लैंड से और सी से टारगेट किया है हूथी के जो मिलिट्री साइट्स हैं यमन के अंदर, ताकि ये जो मर्चेंट और मिलिट्री शिप्स जो गुजर रहे हैं रेड सी से उससे ये बाज रहे और उसके ऊपर ये ना करें। नसरुद्दीन अमर हूथी के जो डिप्टी इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा जी कि ओवरनाइट यूएस स्ट्राइक जो थी उसमें कोई भी डैमेज भी नहीं हुआ है और कोई बहुत सारे कैजुअलिटीज भी नहीं है। हूथी के स्पोक्स पर्सन मोहम्मद अब्दुल सलाम ने कहा है कि यूएस के अटैक्स जो हैं वो हमें इसराइल लिंक्ड या यूएस लिंक्ड वेसल्स पे अटैक करने से बिल्कुल बाज नहीं रख सकते हैं। बाइडन साहब ने कहा था कि जी अर्लियर कि अगर ये बाज ना आए अपने इस आउटरेजस बिहेवियर के लिए तो फिर हम इनके ऊपर और ज्यादा बढ़ा देंगे अटैक्स हुतीज के ऊपर। और जो फर्स्ट नाइट ऑफ अटैक्स जो थी यमन के ऊपर उसमें वो कहते हैं जी कि 150 म्यूनिशंस जो हैं यूके और यूएस ने फायर किए हैं हुतीज के ऊपर। तो जनाब ये लड़ाई जो है ये तो दिन ब दिन फैलती ही चली जा रही है। आज एक पोल सर्वे आया है जी एबीसी न्यूज एंड इप्सोस का और इसके अंदर बताया गया है कि ट्रंप साहब बाइडन साहब से आगे चल रहे हैं और बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं बहुत सारे की मेजर्स के ऊपर। ट्रंप साहब जो हैं वो कहते हैं जी कि ही लीड्स अगेंस्ट रिपब्लिकन कैंडिडेट्स आल्सो रॉन डिसेंटिस निकी हेली विवेक रामास्वामी एंड असा हचकिंसन ऑन मेनी फ्रंट्स। 68% रिपब्लिकन जो हैं वो कहते हैं कि ट्रंप इज द बेस्ट चांस टू गेट इलेक्टेड इन नवंबर। ये जो इनके इलेक्शन होने वाले हैं इसी तरह जो कि कौन जीत सकता है 12% कहते हैं हेली जो निकी हेली है वो जीत सकती है। 11% कहते हैं डिसेंटिस। 27% ऑफ द कॉलेज डिग्री होल्डर्स जो हैं वो समझते हैं कि ट्रंप साहब जो हैं वो ही बेस्ट हैं लोगों का मसले हल करने के लिए। 57% डेमोक्रेट्स जो हैं वो कहते हैं कि नहीं बाइडन साहब ये मसले हल कर सकते हैं। 70% रिपब्लिकन एडर्स जो हैं दे आर सेटिस्फाइड विद ट्रंप एंड स्ट्रेटजी। 33% जो हैं उन्होंने कहा कि बाइडन साहब की अप्रूवल रेटिंग जो है इट इज वर्स देन ट्रंप्स लो रेटिंग एज प्रेसिडेंट विच इज 36% विच वॉज 36% यानी बाइडन साहब की 33% है ट्रंप साहब की भी से भी नीचे आ गए हैं। ये लोएस्ट सिंस जॉर्ज बुश फ्रॉम 2006 टू 2008। 58% जो है वो डिसअप्रूव करते हैं इनकी सारी जो पॉलिसीज हैं खासतौर पे जो जॉब से रिलेटेड है बाइडन साहब की। 31% वुमेन अप्रूव करती हैं बाइडन साहब की पॉलिसीज। इन 2022 57% वुमेन जो थी उन्होंने इनके लिए वोट किया था और उन्होंने बाइडन साहब को फेवर किया था। अब जो है 31% अप्रूव करती हैं सिर्फ। 34% मेन अप्रूव बाइडन पॉलिसीज और वो कहते हैं जी कि इनका जो अप्रूवल रेटर जो है वो नीचे आ गया है 21 percentage points अमंग ब्लैक्स और 15 percentage points अमंग हिस्पैनिक्स। और जाहिर है अभी इसमें मुसलमानों का नहीं आया तो मुसलमानों का भी जो है वो भी जाहिर है नीचे ही होगा। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स यानी कि जिनकी जब मैंने आज रिपोर्ट पढ़ी तो मुझे बड़ी हंसी आई कि पायन हुन होर लुट के मतलब है दुनिया नु इक्की तरफ तुसी कर देना है। इन्होंने आज फिर से अपील की है कि 4.2 billion US dollars जो हैं वो चाहिए हैं यूक्रेन की वॉर के लिए इस 2024 के अंदर। उन्होंने डोनर्स को कहा है कि भई आप ये जो इनकी कम्युनिटीज और रेफ्यूजीज हैं इनका ख्याल करने के लिए ये पैसे दें। थाउजेंड्स ऑफ किड्स जो हैं दे आर लिविंग इन कम्युनिटीज ऑन फ्रंट लाइन्स ऑफ वॉर दे आर टेरिफाइड एंड ट्रॉमाटाइज्ड एंड दे आर डिप्राइव्ड ऑफ द बेसिक नेसेसिटीज इसलिए हमको इनको ह्यूमैनिटेरियन एड देनी चाहिए। इनके जो घर स्कूल हॉस्पिटल्स में ना तो पानी है ना गैस है ना कुछ और है और सर्दी बहुत ज्यादा है एंड दिस इज हैविंग डेवस्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑन देम। इन्होंने कहा जी कि 3.1 billion आप हेल्प करने के लिए दें और 8.5 million पॉपुलेशन जो कि विच इज इन डायर नीड ऑफ असिस्टेंस और 1.1 billion जो है ऑफ 2.3 million यूक्रेनियन रेफ्यूजीज उनको हेल्प जो है पहुंचानी पड़ेगी। वो कहते हैं जी कि सिर्फ 67% ऑफ 3.9 billion जो है वो जो हमने अपील किया था उसमें से मिला है हमको और वो कहते हैं जी कि ओवर 14.6 million दैट इज द 40% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ यूक्रेन नीड्स ह्यूमैनिटेरियन एड। तो पायन जरा आप पैलेस्टाइन के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दें आपको बस एक ही जो है वो नजर आ रही है जगह। अच्छा जनाब दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय राजा बादशाह जी। राजा बादशाह आपको पता ही है दिल के भी राजा हैं और बादशाह भी हैं। तो जनाब ऑल स्टेट एजेक्स एजेंसी के साथ हैं और आपके बहुत सारे डॉलर बचा सकते हैं तो आप राजा बादशाह जी को कॉल कर सकते हैं। राजा बादशाह जी का नंबर है 6472903773 6472903773 इनका नंबर है। पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जी उसने आज जो सेनेट में चूंकि बार बार रेजोल्यूशन एक तो पास भी हुई है और आ भी रही है कि भाई डिले कर दें इलेक्शन उसके ऊपर आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि हमने तमाम अरेंजमेंट जो है फरवरी 8 के इलेक्शन के लिए बना दिए हैं और ये एडवाइजेबल नहीं है अब कि आप इन इलेक्शंस को पोस्टपोन करें। जनवरी 5 को जो सेनेट की रेजोल्यूशन आई थी जिसमें कहा गया था कि जी इलेक्शंस को डिले किया जाए तो ये जो प्ली थी ये लेकर आए थे, यानी कि ये जो रेजोल्यूशन थी ये मूव की थी सेनेटर दिलावर खान साहब ने, और उस वक्त जो थे 100 में से सिर्फ 14 लोग मौजूद थे, और 14 में से भी सिर्फ जो 12 लोग थे उन्होंने इसके ऊपर जो है वोटिंग की थी, और फिर ये बिल जो है यानी कि ये रेजोल्यूशन जो है ये पास हो गई थी। तो अब उन्होंने ईसीपी ने कहा है कि नहीं, हमने जो है सारी अरेंजमेंट्स जो है कर दी हैं, जिसके के ऊपर आपने कहा था कि जी शायद सर्दी भी बहुत पड़ रही है और सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स नहीं है, तो वो हमने दोनों कर दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि सर्दी के मौसम में पहले भी बहुत सारे जो हैं वो इलेक्शंस होते रहे हैं, तो उसके ऊपर कोई डरने की इतनी बात नहीं है। तो वो कह रहे हैं जी कि ये इलेक्शंस को आप आगे बढ़ने दें। जस्टिस मुसर्रत हिलाली जो हैं सुप्रीम कोर्ट की, आज उन्होंने बहुत ज्यादा एतराज किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, द वे दे आर हैंडलिंग पीटीआईज मैटर्स अहेड ऑफ इलेक्शंस। मुसर्रत हिलाली साहिबा जो हैं उन्होंने कहा जी कि एक जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है वो बिल्कुल फेयर नहीं है, क्योंकि वो एक पार्टी के पीछे भाग रहे हैं। ये आज उन्होंने बातें की जिस वक्त जो है पीटीआई ने विदड्रॉ की है अपनी पिटीशन सीकिंग कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट ईसीपी, क्योंकि वो कहते हैं जी कि हमको लेवल प्लेइंग फील्ड जो था वो नहीं दिया जा रहा। बहरहाल आज उन्होंने ये विदड्रॉ कर ली। 3-member बेंच लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर एंड जस्टिस मुसर्रत हिलाली, और इसमें पीटीआई के जो लॉयर थे लतीफ खोसा साहब, उन्होंने फिर चीफ जस्टिस जब उनकी बात ही नहीं सुन रहे थे तो उनको फाइनली कहा जी कि हम जो पीटीआई है हम अब लोगों की अदालत के सामने जाएंगे, क्योंकि आप तो हमारी बात सुन नहीं रहे हैं, हम ये केस आपकी अदालत में अब बिल्कुल और ज्यादा लड़ना नहीं चाहते हैं, थैंक यू वेरी मच। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो जनवरी 13 का वर्डिक्ट दिया था उसके अंदर पीटीआई से वो जो पिशावर हाईकोर्ट ने इनको बैट का सिंबल दिया था वो भी ले लिया था, तो उसके ऊपर बात करते हुए उन्होंने कहा जी कि जिस वक्त आपने ये सिंबल पीटीआई से लिया है तो आपने उनका हक जो है 230 सीट्स पे कंटेस्ट करने का था वो भी छीन लिया है, और उन्होंने कहा कि जी पीटीआई के कैंडिडेट्स जो हैं अब एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स कंटेस्ट करेंगे, और उनकी सारी डिटेल्स जो हैं जल्द ही पीटीआई जो है वो अनाउंस करेगा। तो आज बहुत गुस्से में थे लतीफ खोसा साहब। पीटीआई के ऊपर बात करते हुए मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं उन्होंने कहा जी कि ये एक टेररिस्ट ग्रुप है और टेररिस्ट जो होते हैं उनको सिंबल नहीं दिया जाता है। मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं उन्होंने आज अपनी इलेक्शन कैंपेन जो है वो किक स्टार्ट की है, और उन्होंने कहा जी कि ये पीटीआई का ग्रुप जो है ये टेररिस्ट है जिसने कि मई 9 के वायलेंट अटैक्स जो है शुरू किए थे, और इनका जो सिंबल है वो घड़ी होना चाहिए इमरान खान साहब का, क्योंकि घड़ी इन्होंने चोरी की थी, या कि इनका सिंबल पेट्रोल बॉम्ब्स होने चाहिए जो कि इनके वर्कर्स ने पुलिस ऑफिशियल्स के ऊपर फेंके थे, और उन्होंने कहा जी कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जो तुमने किया है वो तुम्हारे वापस आके जो है यानी कि हॉन्ट कर रहा है। वो कहते हैं कि आपका वैसे भी निशान बल्ला नहीं होना चाहिए बल्कि बैटन होना चाहिए, यानी कि सोटी होना चाहिए जिससे कि आपने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस तोड़ी थी, और जो आपने बीज दूसरों के लिए बोए थे अब वो आपके लिए आ गया। इमरान खान साहब के बारे में उन्होंने कहा जी बड़ा ही ब्लू आइड बॉय था और ये हमेशा से रिवेंज लेना चाहता था पीएमएलएन और नवाज शरीफ साहब से, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने कभी भी जो है रिवेंज किसी से नहीं लिया है, और उन्होंने कहा जी कि जो दूसरों को चोर कहता था उसने खुद जो है घड़ियां चुराई हैं तोशाखाना से। उन्होंने कहा जी कि जो अब ये ऐसे सियासत यहां पे नहीं चलेगी कि अगर आपको अपने डिजायर्ड वर्डिक्ट्स चाहिए तो आप एक जज की जो सास है उसको फोन करके और उसको बोलें कि हमारे हक में फैसले करें, तो अब ये नहीं चलेगा। आप इसी तरीके से 2018 जो है उसमें जीते थे, आपने एक आरटीएस का बटन दबाया था और आपको लग रहा था ये फैसिलिटी आपको अब भी मिलेगी, जो कि अब आपको नहीं मिल रही। आपके एम्पायर्स भी जो थे और आपकी जो बाकी चीजें थी वो सब जो थी फेक थी, फोर्जरी की हुई थी, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं थी। और उन्होंने लोगों को कहा कि अगर आप चाहते हैं कि मुल्क के अंदर प्रॉस्पेरिटी आए, इन्फ्लेशन नीचे जाए, आपके यूटिलिटी बिल्स नीचे आए, तो आप शेयर के जो निशान है उसके ऊपर आप वोट दें, और अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान अमीर होए, आपकी यूथ जो है उसकी हालत अच्छी हो जाए, तो पीएमएलएन को वोट दें। ठीक है जी पायन, ये बात है। पीटीआई के जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर अली खान, उन्होंने कहा जी कि चूंकि अब हमको दिया नहीं गया है बल्ले का निशान और हम बता नहीं सकते हैं कि कौन कौन से हमारे कैंडिडेट्स हैं, तो हम सबको कह रहे हैं कि आप एज इंडिपेंडेंट लड़ें, तो आप इंडिपेंडेंट जो लड़ेंगे लोग उनके लिए बहुत सारा हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो फिर होएगा। वो कहते हैं जी कि पीटीआई जो है फरवरी 8 के लिए इलेक्शंस लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स के साथ, और आज रावलपिंडी में ये रिपोर्टर्स के साथ बात कर रहे थे और इन्होंने कहा जी कि हम सारे लोगों को जो हमारे कैंडिडेट्स हैं जो पीटीआई को बैक कर रहे हैं उनको हम डायरेक्शंस दे रहे हैं कि उनको किस तरह से चीजें आगे लेकर जानी हैं। उन्होंने कहा बता हम एक रिव्यू पिटीशन फाइल कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के अगेंस्ट, क्योंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था जिसमें कि उनका बल्ला निशान ले लिया गया था उनसे, उसने जो है वो ड्यू राइट्स नहीं दिए इनको और डेमोक्रेसी को डेंट किया है। उन्होंने कहा जी ईसीपी जो है यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल है कि जो सैकड़ों सीटों से अब पीटीआई को डिप्राइव किया गया है क्योंकि उसको निशान नहीं मिला, तो ये रिस्पॉन्सिबल है। पीटीआई जो है अब वो एक पॉलिसी बनाएंगे कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया इसके बाद हमको कैसे आगे चलना है। उन्होंने सारे वर्कर्स और कैंडिडेट्स को कहा कि आप डिसअपॉइंट भी ना होएं और बिल्कुल पीसफुल रहें, तोड़फोड़ ना करें, और एक लिस्ट ऑफ पार्टी बैक्ड कैंडिडेट्स जो है विद देयर सिंबल्स जो उनको दिए जाएंगे वो इनकी पीटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगी। और उनसे पूछा गया इस मौके के ऊपर कि जी ये कब तक आएगी, उन्होंने कहा जी 3 दिन में। इसके अलावा उनसे पूछा गया कि क्या आपकी अलायंस मजलिस वहदत मुसलमीन और उनके चेयरमैन अल्लामा नासिर अब्बास के साथ, ये जो रिलीजियस पार्टी है उसके साथ हो सकती है कोई सीट एडजस्टमेंट के चक्कर में, तो गौर साहब ने कहा कि नहीं बिल्कुल हमारी कोई अलायंस इनके साथ नहीं हो सकती है। ईसीपी ने इसके अलावा जो है जी 150 पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनको जनरल इलेक्शंस के लिए सिंबल्स एलोकेट किए हैं और आज ये सारा का सारा जो डिटेल्स हैं ये ईसीपी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर है। पीएमएलएन को दिया गया है टाइगर, पीपीपी पार्लियामेंटेरियंस को एरो, पीपीपी को सोर्ड, पीटीआई नजरियाती को बैट्समैन, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को ईगल, एमक्यूएमपी काइट, जेयूआईएफ किताब, जेयूआई पाकिस्तान स्केल और स्केल का उसको निशान दिया है, पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस को टर्बन, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी को एक्स, एएनपी को लैंटर्न, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी को कैमल, बलोच अवामी पार्टी को काओ, और ये जो ईसीपी का 5 मेंबर बेंच था हेडेड बाय जो इनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब, इन्होंने ये ऑर्डर्स दिए थे अंडर सेक्शन 4 ऑफ इलेक्शंस एक्ट 2017, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि कोई और इसके अलावा सिंबल्स किसी पार्टी या उसके कैंडिडेट को ना दिए जाएं। और ईसीपी जो है इसके अलावा उसने 177 सिंबल जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को भी दिए हैं। शाह महमूद कुरैशी जो है उन्होंने कहा जी कि साइफर का सारा केस जो है वो लाइव ब्रॉडकास्ट होना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि कौन मुल्क के साथ है और कौन मुल्क के खिलाफ है। आज ये रावलपिंडी में बात कर रहे थे मीडिया के साथ अडियाला जेल के बाहर, और इन्होंने कहा जी कि ये सारी जो कार्रवाई है इसको ऑब्जर्व करने का, सारी दुनिया को भी जानने का जो है वो हक है। इमरान खान साहब जो है वो सिर्फ ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस मांग रहे हैं और हम लास्ट बॉल तक खेलेंगे। और उन्होंने कहा जी कि जो मैं ना तो कोई टर्न कोट हूं यानी कि ना तो मैं भगोड़ा हूं और ना ही मैं एस्टेब्लिशमेंट का ब्लू आइड बॉय हूं, और ये सारे के सारे जो अरेंजमेंट सब किए जा रहे हैं इंजीनियर्ड इलेक्शंस लाने के लिए, लेकिन ये लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। उन्होंने कहा जी कि ईसीपी ने क्यों भी कोई एतराज जो दूसरे इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए उनके ऊपर क्यों नहीं किया, और अगर उसको हमारी पार्टी के ऊपर एतराज था इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे तो 6 महीने पहले उसने जो है वो क्यों नहीं डिले किए इलेक्शन, और अब जब इलेक्शन पास आ गए हैं तो वो ये बहाने बना के जो है वो कर रहे हैं सारा कुछ। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि हमारे तो सैकड़ों ही जो लीडर्स हैं खासतौर पर बड़े लीडर सबके सब जेल में है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की जो है कांपे टांग रही है, और आमिर ख्याली कियानी, इमरान इस्माइल, अली जैदी, महमूद मौलवी, तनवीर इलियास जो हैं वो कहते हैं जी वो मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे बड़ा कन्विंस किया कि मैं पीटीआई को छोड़ दूं कि आपकी तमाम मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, लेकिन मैंने नहीं छोड़ी। और वो कहते हैं जी कि जो भी कोई चाहते हैं कि इमरान खान साहब जेल से वापस आएं तो उनको मैं कहता हूं कि पीटीआई के लिए वोट करें, और हम दोनों जो हैं हमको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है जेल में, किसी से हमको मिलने की इजाजत नहीं है, और मुझे तो अपने ब्रदर इन लॉ के जनाजे के ऊपर तक इन्होंने जो 3 दिन पहले उनकी डेथ हुई थी उसके ऊपर भी पार्टिसिपेट करने की इजाजत नहीं दी। हमारे दरवाजे जो है हमेशा के लिए खुले हुए हैं, सियासत में कभी दरवाजे बंद नहीं होते हैं, और पीटीआई रेडी है किसी के साथ भी डायलॉग करने के लिए टू डिफेंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड फॉर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस। तो ये आज उन्होंने बड़ी लंबी चुड़ी बात जो है वो की है। इसके साथ साथ जी बीबी जरदारी साहब जो है वो भी एक पब्लिक रैली को एड्रेस कर रहे थे इन डेरा मुराद जमाली इन नसीराबाद डिस्ट्रिक्ट इन बलूचिस्तान, और उन्होंने कहा जी कि अब जो लड़ाई है वो एरो और टाइगर के बीच में या बैट के बीच में नहीं है, तो आप जो हैं पीपल्स पार्टी को वोट दें, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि ये पुराने जो हैं वो पॉलिटिशियंस चले जाएं और पाकिस्तान ईरान पाइपलाइन आ जाए और एक नसीराबाद में यूनिवर्सिटी बने और एक NICVD की तरह का हॉस्पिटल बने ताकि आपको सखर और खैरपुर में ट्रीटमेंट के लिए ना आना पड़े, और आपके जो भाई जो है टेररिज्म के अगेंस्ट जो फाइट कर रहे हैं और बहनें मिसिंग लोगों के, तो अगर आपको इन सब के लिए इंसाफ चाहिए और ये सब सुविधाएं भी यानी भी चाहिए हैं, तो फिर आप जो है वो PPP को वोट दें और हम आते सारी तमाम मसले भी हल करेंगे और हम कश्मीर का मसला भी हल करेंगे। और वो कहते हैं जी कि इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहां से नसीराबाद से जो PPP के कैंडिडेट्स हैं, मीर चंगेज खान जमाली, मीर सादिक उमरानी, बाबू गुलाम हुसैन, हसन अली जमाली, मीर गुलाम फरीद रईसानी, फैसल खान जमाली, मौला दाद खान, इन सबको आप जो है वोट दो, क्योंकि आपकी मुश्किलें यही कर सकते हैं, वरना दूसरे लोग जो हैं वो आप पाकिस्तान के खिलाफ खाली साजिशें करते हैं। यहां के बलूचिस्तान के लोग जो हैं बड़े बहादुर हैं, वो किसी से डरते नहीं है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ ही जी एक और भी जलसा हो रहा था इस्तकाम में, पाकिस्तान के जो पेट्रन इन चीफ हैं जहांगीर खान तरीन साहब का भी मुल्तान में, तो उन्होंने भी कहा जी कि मुल्तान के तमाम मसले मैं ही हल कर सकता हूं। तो वड़े वड़े हैं पहन, मतलब कश्मीर का मसला हल कर देना, सानू वोट दो एक दफा तुसी, ठीक है। हिंदुस्तान के अंदर जी कर्नाटका के अंदर जो बीजेपी के एक बड़े ही कंट्रोवर्शियल MP हैं यूपी से, आनंद कुमार हेगड़े, उन्होंने कहा है जी कि हिंदू कम्युनिटी उस वक्त तक लड़ती रहेगी जब तक कि सारी मस्जिदों के ऊपर वो कब्जा ना कर ले हिंदुस्तान के अंदर। ये वो जो अयोध्या के अंदर अभी जो January 22 में जो राम मंदिर खुलने वाला है बाबरी मस्जिद के ऊपर, जिसको ढाके बनाया गया है, उस सिलसिले में बात कर रहे थे, तो वो कहते हैं जी बाबरी मस्जिद क्या तमाम मस्जिदों को हम रिक्लेम करके उनके ऊपर जो है वो बनाएंगे, अपने मंदिर बनाएंगे। और वो कहते हैं जी कि मैं अगर मैं अपने इस इलाके से आया फिर से जीत के, तो मैं बीजेपी को कहूंगा कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन या कि संविधान जो है उसको आप बदल दें। और कांग्रेस को उन्होंने बड़ा एतराज किया, क्योंकि जाहिर है कि जो January 22 का सेरेमनी हो रहा है अयोध्या पे, उसमें मैंने आपको बताया था फ्राइडे के दिन सारी स्टोरी के जो जितनी भी टॉप लीडरशिप है कांग्रेस की, उसने कहा था कि जो ये पॉलिटिकल गेन्स के लिए चूंकि यूज कर रहा है बीजेपी अयोध्या का ओपनिंग, तो हम इसको पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो उन्होंने कांग्रेस को आज बहुत लान तान की, उन्होंने कहा जी कि ये बहुत ही एंटी हिंदू पार्टी है, ऐसे है। इंडिया जो है उसने जी आज समन किए हैं यूके के जो हाई कमिश्नर है इंडिया के अंदर अलेक्जेंडर एलिस, उनके ऊपर, क्योंकि दो दिन पहले पाकिस्तान की साइड का जो कश्मीर है वहां पे यूके की जो हाई कमिश्नर पाकिस्तान में है जेन मैरियट, उन्होंने वहां पे जाके विजिट किया था और उन्होंने कहा था जी कि इंग्लैंड के अंदर चूंकि ज्यादातर लोग मीरपुर से हैं, तो इसलिए दिस इज पार्ट ऑफ द डायस्पोरा आउटरीच एक्सरसाइज। और उन्होंने कहा जी कि हम जो हैं हमारे बहुत पीपल्स टू पीपल्स टाइज हैं मीरपुर के लोगों के साथ, इंग्लैंड के साथ। 70% ऑफ यूके पाकिस्तानीज हैव रूट्स इन मीरपुर, और वहां पे जब वो गई तो उनको जो हॉस्पिटैलिटी शो की तो उसका उन्होंने बड़ा शुक्रिया अदा किया। इसके ऊपर हिंदुस्तान की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है वो उसने बड़ा गुस्सा मनाया, उसने कहा जी हम बड़ा ही सीरियसली इस चीज को देखते हैं और ऑब्जेक्ट करते हैं ब्रिटिश हाई कमिश्नर जो इस्लामाबाद में है अलॉन्ग विद यूके फॉरन ऑफिस ऑफिशियल वहां पे गई है, और ये जो है इन्फ्रिंजमेंट है ऑफ इंडियाज सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, इसलिए कि जो पाकिस्तान की साइड का भी जो कश्मीर है वो हिंदुस्तान का हिस्सा है, ये यूनियन टेरिटोरीज ऑफ जम्मू और कश्मीर और लद्दाख जो है दे हैव बीन एंड ऑलवेज विल बी पार्ट ऑफ इंडिया, तो इसलिए उनको वहां पे विजिट नहीं करना चाहिए था। ठीक। अच्छा जनाब, हिंदुस्तान के अंदर फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर मिलिंद दियोरा जो हैं, उन्होंने आज कहा जी कि मैं कांग्रेस को छोड़ रहा हूं और शिवसेना को मैं ज्वाइन कर रहा हूं, इसलिए कि कांग्रेस अपनी आइडियोलॉजिकल और ऑर्गेनाइजेशनल रूट्स जो है उसको भूल चुकी है और कास्ट और डिविजन्स के ऊपर और जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं उनको टारगेट कर रही है। इन्होंने कहा जी कि मेरी फैमिली के ताल्लुकात जो रहे कांग्रेस के साथ 55 ईयर्स तक कांग्रेस के साथ रहे, इनके जो वालिद साहब थे कांग्रेस के बड़े वेटरन लीडर थे मुरली दियोरा, तो उन्होंने कहा जी कि नहीं अब मैं इनके साथ आगे ज्यादा नहीं चल सकता हूं। और ये बहुत दिनों से कह रहे थे कि जी ये जो मुंबई साउथ की कॉन्स्टिट्यूएंसी है इससे मुझे लड़ने दें, उसके ऊपर कुछ इनके डिफरेंसेज आए जिसकी वजह से इन्होंने फिर शिवसेना को ज्वाइन किया है। ये सबसे पहले इलेक्ट हुए थे लोकसभा के लिए मुंबई साउथ से इन 2004 एंड 2009, लेकिन 2014 एंड 2019 में ही लॉस्ट टू इन अदर कैंडिडेट, और उसके बाद इन्होंने जो है फिर कांग्रेस में रहते हुए काम किया, लेकिन अब शिवसेना किया, और इस मौके पर इन्होंने बहुत ज्यादा कांग्रेस को और भी क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि ये जो अदानी ग्रुप जैसे जो बहुत प्रॉस्पेरिटी इस मुल्क में ला रहे हैं ग्रुप, उनके भी ये बड़े खिलाफ हैं। ठीक है जी, पैन उनके चैन है, हुन आराम है। ठीक है जी, और जनाब दीपिका पाडुकोन जो कि आपको पता है कि हीरोइन है फाइटर मूवी की, ऋतिक रोशन के साथ मेन लीड है, आज जब फाइटर का ट्रेलर लॉन्च हुआ तो वहां पे दीपिका पाडुकोन नहीं थी, तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे कहा कि भाई मैं मिस करूंगी एज माई आई विल मिस माई स्क्वाड्रन एंड गुड लक टू द टीम, और जो है वो लेकिन मैं अनवेल हूं। ये फिल्म जो है ये बना रहे हैं सिद्धार्थ आनंद, जिसकी के दो फिल्में ऑलरेडी ये कर चुकी हैं, बचना है हसीनो एंड पठान, लेकिन अब ये काम कर नहीं रही हैं, और इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि चूंकि इनकी लड़ाई हो गई है सिद्धार्थ आनंद से कुछ मामलों के ऊपर, तो इसलिए आज ये नहीं आई, लेकिन इन्होंने कहा मैं ठीक नहीं हूं।
ठीक है जी,
मैं भी हो सकता है कल मैं भी ठीक हूं। अच्छा जी, महेश भट्ट जो है उन्होंने आज बड़ा खुल खुला के एक इंटरव्यू दिया है, ये जो आमिर खान और रानी मुखर्जी की फिल्म आई थी गुलाम जो कि रिलीज हुई थी 1998 में, उसके ऊपर उन्होंने कहा जी क्या बात है कि इमरान खान साहब जो है महेश भट्ट की किसी फिल्म के में काम नहीं करते हैं, तो विक्रम भट्ट ने कहा कि मेरे साथ उनके ताल्लुकात हैं, मेरी बेटी की शादी पे भी आए थे, कभी कभी हम फोन पे बात भी करते हैं, लेकिन महेश भट्ट साहब को उन्होंने कहा था कि महेश साहब ऐसी फिल्म बनाओ कि ये इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए कुछ ना हो आपके करियर में, तो महेश भट्ट साहब ने कहा कि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता है, मेरी जिंदगी में तो और भी बहुत सारी चीजें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो वो कहने लगे जी कि वो आमिर खान साहब को ये बात उनकी शायद बुरी लग गई, और उसके बाद से फिर दे फेल आउट और कभी उन्होंने साथ में काम नहीं किया। रानी मुखर्जी के बारे में, इस फिल्म में गुलाम में काम करने के बारे में उन्होंने कहा जी कि रानी मुखर्जी को मैंने देखा था एक और फिल्म में, राजा की आएगी बारात, और फिर मैंने ही रिकमेंड इसको किया था, लेकिन इसकी आवाज बहुत बुरी थी। जब हमने ये फिल्म बनाई तो लोगों ने मुझे कहा कि जी रिलीज करने से पहले फिल्म का थोड़ा डबिंग कर लो, क्योंकि लोगों को ये आवाज अच्छी नहीं लगेगी इसकी, तो हमने जब इसकी डबिंग की तो लोगों ने तो बल्कि कहा इसको रिप्लेस ही कर दो, तो मैंने कहा नहीं, एक्ट्रेस बड़ी अच्छी है और लगती भी, दिखने में भी बड़ी खूबसूरत लगती है स्क्रीन पे, तो हम इसको रखेंगे लेकिन आवाज डबिंग करेंगे। ये उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे कि अभी एक फेस्टिवल के बीच में रानी मुखर्जी ने कहा था कि मैं तो जब शुरू शुरू में आई थी तो मेरी तो आवाज तक लोगों को अच्छी नहीं लगती थी। है जी, ऐसा है। और जनाब PSL 9 यानी कि पाकिस्तान सुपर लीग का जो 9th एडिशन है वो फरवरी 17 से शुरू हो रहा है, इसके ऊपर बात करते हुए आज PCB के मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन जका अशरफ साहब जो हैं उनकी मुलाकातें सिंध के IGP रिफत मुख्तार से हुई, जिसमें कि उन्होंने कहा जी कि हम बिल्कुल फुल प्रूफ सिक्योरिटी सिस्टम्स आपको ऑफर करेंगे, ये जो इसमें जो 11 क्योंकि जो मैचेस हैं वो कराची के अंदर होंगे, इंक्लूडिंग क्वालिफायर, 2 एलिमिनेटर्स एंड द फाइनल। IGP साहब ने कहा जी कि हमने इससे पहले भी बड़ा प्रोफेशनली और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स लेते हुए जो भी कोई नेशनल स्टेडियम के अंदर इवेंट्स पास्ट में भी हुए हैं उनका ख्याल किया है, तो इस वक्त भी हम आपको फुल प्रूफ सिक्योरिटी मेजर्स जो हैं उसका हम आपको वादा देते हैं। इसके ऊपर जो जका अशरफ साहब हैं उन्होंने उनका सेटिस्फेक्शन का इजहार किया और बड़ा उनका जो है शुक्रिया भी अदा किया। और जनाब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में सेकंड T20 हो रहा था और हमारे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जो हैं इफ्तिखार अहमद साहब वो खड़े हुए थे बाउंड्री लाइन के ऊपर और कॉन्स्टेंटली एक फैन जो है उनको बोलता जा रहा था चाचू चाचू चाचू, उसके ऊपर जो है ये बेतहाशा ऑफेंड हो गए। ये मैच जो था चल रहा था सिडॉन पार्क हैमिल्टन में न्यूजीलैंड में, तो पहले तो ये गुस्से हुए और फिर उन्होंने उसको जो है मुड़ के शट अप कॉल दी, तो जब उसने कहा कि जी सर हम तो आपके फैन हैं तो हम तो आपको प्यार से बोलते हैं, तो उसके ऊपर फिर भी इफ्तिखार ने कहा तो स्टे क्वाइट। ऐसा है। और जनाब न्यूजीलैंड ने सेकंड T20 भी पाकिस्तान को हरा दिया 21 रन से, और पाकिस्तान के ओपनर्स जो हैं रिजवान और साइम अयूब वो जो है फर्स्ट ओवर्स में ही जस्ट 10 रन के ऊपर ही जब स्कोरबोर्ड पे था तो आउट हो गए। बाबर आजम फखर जमान जो हैं फिर उन्होंने कुछ स्टेबिलिटी लाई और 87 रन का पार्टनरशिप बिल्ड किया। फखर जो है उन्होंने 50 रन बनाए ऑफ 24 बॉल्स, इफ्तिखार अहमद ने सिर्फ 4 ऑफ 8 बॉल्स, आजम खान ने 2 ऑफ 3 बॉल्स, आमिर जमाल ने 9 ऑफ 8 बॉल्स, पाकिस्तान को इन्होंने टारगेट दिया था कीवीज ने 194 रन्स का, जो कि डूएबल था, लेकिन पाकिस्तान के कोई भी खिलाड़ी अच्छी तरह से नहीं खेल सके। इससे पहले पाकिस्तान के बॉलर्स ने बहुत जबरदस्त काम किया था, हैरिस रऊफ ने 3 विकेट्स ली थी और जो पाकिस्तान के जो बाकी के बॉलर्स थे उन्होंने भी एक एक विकेट ली, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने कोई विकेट ना ली, हालांकि वो स्किपर भी
हैं, कप्तान है जी,
कप्तान स्किपर हैं जी, मैन व्हाट इज दिस, ठीक है जी। और जनाब ये जो सेकंड मैच हो रहा था T20 का, इसके अंदर मोहम्मद रिजवान ने जो सिर्फ अभी 31 ईयर्स के हैं, बड़ी उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है, वो जो है सबसे ज्यादा 6 हिट करने वाले जो हैं अब पाकिस्तानी बन गए हैं। इन्होंने 77 सिक्सेस जो हैं T20 के अंदर मारे हैं। इसके नीचे हैं मोहम्मद हफीज 76, शाहिद अफरीदी 73, शोएब मलिक 69, बाबर आजम 55, उमर अकबर 55। तो ये जनाब अभी तो इन्होंने माशाल्लाह और भी खेलना है, तो ये आगे 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 जो है वो भी जाएंगे। एंड जनाब एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज इज अबाउट आवर मॉन्ट्रियल का मुंडा फेलिक्स ऑजर एलोसिमो। ये जो है इन्होंने डिफीट किया अपने ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट डोमिनिक थीम को 6-3, 7-5, 6-7, 5-7, 6-3 से ऑन अ मिक्स डे फॉर कनेडियंस एंड ऑस्ट्रेलियन ओपन। ही इज सीडेड ऑन नंबर 27 और इनको लगे 4 घंटे और 59 मिनट्स टू कम्प्लीट द फर्स्ट राउंड ऑफ विक्ट्री एट मेलबर्न पार्क। एज अ रिजल्ट ही मूव्स टू द सेकंड राउंड नाउ।
ठीक है जी, कांग्रेचुलेशंस टू हिम,
या
ऑल द बेस्ट टू हिम एंड ऑल द अदर गाइज
एंड द कनेडियंस ऑल्सो। सुनो भी मुबारक भाई।
नहीं नहीं, मुबारक मुबारक जी, मुबारक जी।
हाँ हो, चलो कहीं से तो कोई अच्छी खबर आई।
हाँ,
क्योंकि क्रांची से तो कोई अच्छी खबर नहीं आ रही है ना, वहां पे तो वो बेगम ने मारा ना मियां साहब को।
चलिए ये थी हमारी आज की न्यूज एंड बखिया की न्यूज। इंशाल्लाह ताला कल इसी वक्त हम आपसे फिर दोबारा मुलाकात करेंगे, होपफुली बशर्त जिंदगी।
हाँ जी, और अगर कल मैं आ गई।
थैंक यू सो मच शैले जी, एंड
सी यू टुमारो इंशाल्लाह।
अब हम आपको लिए चलते हैं Program in progress with Zeeshan Ahmed. Enjoy the program and we'll see you tomorrow, inshallah ta'ala. Uswat ke liye ijazat, ada hafiz.
हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी, कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें, क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है उधर भी।
ये कहा
Thank you.
मुझको कोई खींचे तेरी ओर लिए जा, ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझको कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। जहर कोई पिए जाए, शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे तो कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। तेरी कसम मेरे होठ दिए जाए, शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। तस्वीर जैसे कोई तेरी नजर बन के जुबान, लेकिन तेरे पैगाम दिए जाए, शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे तो कोई खींचे तेरी ओर दिए जा, ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा।
Oh,
زلف کے سائے میں دل ارما بھرا سو جائے گا. تم چلے جاؤ نہیں تو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. جگمگا جائے آپ کی قسم. درد جگر دل میں جگایا آپ نے. درد دل درد جگر دل میں جگایا آپ نے. پہلے تو میں شاعر تھا, پہلے تو میں شاعر تھا, عاشق بنایا آپ نے. درد دل درد جگر دل میں جگایا آپ نے. درد دل درد جگر دل میں جگایا آپ نے. مدہوش نظریں کر رہی ہیں شاعری, آپ کی مدہوش نظریں کر رہی ہیں شاعری. یہ غزل میری نہیں, یہ غزل ہے آپ کی. मैंने तो बस वो लिखा जो कुछ लिखाया आपने, दर्द जिगर दिल में जगाया आपने, दर्द जिगर दिल में जगाया। कब कहां सबको गई जितनी भी थी परछाइयां, उठ गई यारों की महफिल हो गई तन्हाइयां, कब कहां सबको गई जितनी भी थी परछाइयां, उठ गई यारों की महफिल हो गई तन्हाइयां, क्या किया शायद कोई पर्दा गिराया आपने, दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने, दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। और थोड़ी देर में बस हम जुदा हो जाएंगे, और थोड़ी देर में बस हम जुदा हो जाएंगे, आपको ढूंढूंगा कैसे रास्ते खो जाएंगे, नाम तक भी तो नहीं अपना बताया आपने, दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने, पहले तो मैं शायर था आशिक बनाया आपने, दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने।
आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो 770 AM। हमारे प्रोग्राम को टोरंटो में सुनने के लिए डायल कीजिए 647-872-4900, मॉन्ट्रियल 514-907-6288। इसके अलावा कैलगरी, वैंकूवर, एडमिंटन और रिजाइना के नंबर्स आप eawaz.com की वेबसाइट पर जाके हासिल कर सकते हैं। हमारी लाइव 24 घंटे की नशे आपके लिए, विजिट कीजिए eawaz.com।